ओम शांति। आज सवेरे अमृत वेले बाप दादा की जब मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने हम बच्चों को संतुष्ट, ये सर्व गुणों की खान है, इसके ऊपर समझाए। स्व से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, संबंध और संपर्क से संतुष्ट, उसमें प्रकृति भी आ गई, जड़ भी आ गए और चेतन भी आ गए। अव्यक्त बाप दादा अथवा साकार बाबा हम बच्चों को जिन जिन बातों की समझानी देते, हम अगर अपने को चेक करते हैं तो चेक करने से ही खुद को चेंज कर सकते। ये मेरे कान में आती हवा साइड। तो बाप दादा ने संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता, और प्रसन्नता का प्रत्यक्ष फल प्रशंसा बताया। संतुष्टता का बीज संपन्नता, क्योंकि हम देखते हैं देवी देवताएं सदैव प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं जो उनका दर्शन करके भगत भी प्रसन्न हो जाते। इसीलिए खास दूर दूर से भगत देवी देवताओं के मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रसन्नता लेने के लिए जाते, क्योंकि वो आत्माएं संपन्न हैं। संपन्नता के आधार पर प्रसन्नता उनके चेहरे के ऊपर दिखाई पड़ती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जितना जितना हम सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न बनते जाते हैं, उतना उतना हमारा जीवन संतुष्ट होता जाता है। संतुष्टता का आधार ही संपन्नता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, देवताओं के लिए जो गायन किया जाता है, इच्छा मात्र अविद्या, ये जो स्थिति है वो स्थिति तुम ब्राह्मणों की समय पर होनी चाहिए। अगर कोई भी हद की इच्छाएं नहीं है तो संतुष्टता हमारी कभी भी गायब नहीं हो सकती है। हम सदैव हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की इच्छा है तो हमेशा कहा जाता है इच्छा ये कभी भी अच्छा नहीं बनने देती। तो हमें हरेक को खुद की संतुष्टता के लिए, मैं कितना संतुष्ट हूं स्वयं से, खुद की संतुष्टता के लिए हमें खुद को चेक करना है कि हद की कोई इच्छाएं तो हमारे पास नहीं, चाहे मान नाम शान, इसकी कोई भी अगर इच्छा होगी तो संतुष्टता गायब हो जाएगी। संतुष्टता नहीं होगी तो प्रसन्नता भी नहीं आएगी। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सदैव संतुष्ट रहने का जो महामंत्र दिया हुआ है, इस महामंत्र को अगर हम सदैव याद रखते हैं और ये हमेशा हमें अगर ख्याल रहता है, कभी कभी कोई प्रशंसा के आधार पर प्रसन्न होते, दूसरे जब प्रशंसा करते हैं अर्थात महिमा करते हैं, हमारी प्रसन्नता अगर औरों की महिमा के ऊपर प्रशंसा के ऊपर अगर आधारित है तो वो प्रसन्नता टेम्पररी है। क्योंकि आज हम देखते हैं अभी अभी हमारी प्रशंसा होगी और थोड़े समय के बाद निंदा होने में भी देरी नहीं लगी। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को, योगियों को ये पक्का कराया है। योगी उसको कहा जाता है जो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में जो समान रहते हैं उसको कहते हैं योगी। तो हम अपने को चेक करें कि ये हमारी स्थिति हमने कहां तक बनाई, क्योंकि हमें हमारे पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हैं। कभी कभी खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होते हैं। बाबा ने कहा ना, स्वयं की संतुष्टता पहले सबसे चाहिए। जो खुद संतुष्ट नहीं है वो औरों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम किसी से भेंट करते, कंपेयर करते हमारे पार्ट का, और ऊंचे जो है उनको अगर हमारे आगे वालों को देखते हैं कि अरे ये इतने आगे बढ़ गए, हम इतने पीछे रह गए, तो भी प्रसन्नता गायब हो जाती, तो भी संतुष्टता गायब हो जाती है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को जो हमारा पार्ट बताया है, ड्रामा के अंदर जो मुझ आत्मा का पार्ट है, उस पार्ट से मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। मुझे सदैव ये याद रहता है, वारे मैं का नशा रहता है कि मेरा पार्ट स्वयं भगवान के साथ साथ है। मुझे भगवान ने चुना है, मैं भगवान की पसंद की हुई आत्मा हूँ। कोटों में कोई, कोई में भी कोई हूँ। ये जिस समय मुझे नशा रहता है तो कभी भी संतुष्टता गायब नहीं होती है। सदैव अपने पार्ट के ऊपर, खुद के ऊपर नाज रहता है। तो जिस आत्मा को स्वयं की पहचान नहीं है, पहचान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आत्मा हूँ इसको पहचान कहेंगे। पहचान अर्थात मैं कौन सी पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ, मैं कितनी ऊंची आत्मा हूँ, मैं कितनी पोस्ट और पोजीशन वाली आत्मा हूँ, जो भगवान ने मेरे को अपना बना लिया, वो जो नशा है वो हमें निशाने तक पहुंचाता है। वो जो नशा है वो हमें संतुष्ट बना देता है। जब ये नशा चढ़ता है, जिसको कहा जाता है मोलाई मस्ती, मोलाई मस्ती में रहने वालों की कभी भी किसी में आंख नहीं डूबती है। वो सदैव अपनी संतुष्टता की सीमा के अंदर रहते हैं और उनके चेहरे के ऊपर स्वतः ही प्रसन्नता आती जाती। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तो खुद के पुरुषार्थ से अप्रसन्न होने का कारण क्या है। वो कारण ये है कि खुद के ऊपर अटेंशन कम, जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, इसीलिए अप्रसन्न बनते। हम चाहते हैं, कोई भी अपनी वीकनेस को छोड़ना जो चाहता है, अगर नहीं कर सकता है तो क्या होता है, अप्रसन्न होता है, असंतुष्ट होता है। अरे मैंने तो चाहा, अच्छा क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहा, परंतु मैं नहीं कर सकता, मेरा ये जो संस्कार है इसके ऊपर मेरी जीत नहीं होती है, तो असंतुष्टता आ जाती है जीवन। कोई भी वीकनेस है उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हुए अगर वो नहीं छूटती है तो क्या होता है, खुद के लिए असंतुष्ट होते हैं। पर वास्तव में देखा जावे मेरे को जो मेरी कमी का त्याग करना है, अगर दृढ़ता मेरे पास है तो दृढ़ता के आधार पर हम अपनी कमी को एक सेकंड में त्याग सकते, त्यागने में हमको कभी भी देरी नहीं लगती। तो दृढ़ता को अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं, अपने स्वमान की सीट के ऊपर सेट हो जाते हैं और अपने पार्ट को सदैव, बाबा कहता है बच्चे नशा रखो, वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य बनाया है, मैं इतनी ऊंची आत्मा हूँ, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो सदैव क्या होता है, मैं आत्मा स्वयं से संतुष्ट रहती। उसके लिए पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है। जितना जितना हम पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देते हैं, उस अटेंशन के आधार पर ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन से हम स्वयं भी संतुष्ट होते हैं और अन्य आत्माएं भी संतुष्ट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो असंतुष्ट रहने वाली आत्माएं हैं, वो सिर्फ खुद से असंतुष्ट है ऐसा नहीं है, भगवान से भी असंतुष्ट। बाबा ने कहा ना, बाप से भी असंतुष्ट होने वाली आत्माएं कहेंगे ये क्या है बाबा, आपने हमारा ऐसा कैसा पाठ बनाया। बाबा को बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सवेरे अमृत वेले उठ करके बाबा को सीधा उलैनों की माला पहनाना चालू कर देते, ये क्या किया बाबा, आप इतना जल्दी क्यों चले गए, थोड़ा तो ठहरते थे ना, हम आने के बाद तो आप जाते थे ना। स्नेह से ही, परंतु इसमें भी असंतुष्टता हो जाती है, अरे हम देरी से आए। साकार बाबा अव्यक्त तो हो गया, पीछे हम गए आए हैं, परंतु वास्तव में देखा जावे तो हमारा इतना ऊंचा पार्ट है, हमें अव्यक्त बाप दादा की तो इतनी ही परवरिश मिल रही है और बाबा हमें वो भाषणा दे रहा है, तो जो हमारे को मिला है उसमें हम संतुष्ट रहे ना। हम ये क्यों देखे कि इन्होंने साकार की पालना पाई, हमको साकार की पालना नहीं मिली, इसीलिए उस चिंतन में हम जो मिल रहा है उसको भी क्या करते, उसको भी खो देते। हमारे पास बंबई में एक भाई था, वो था बड़ा हसमुख, वो कहता था मैं हमेशा बाबा को उलैना देता हूँ, बाबा आप मेरे को संगम युग पर कुमारी का पाठ क्यों नहीं दिया, मेरे को अपने पुरुष क्यों बना दिया, क्योंकि मैं अगर कुमारी बनती थी तो मैं सेवा केंद्र संभालती थी ना, मैं ज्यादा सेवा करती थी, हमेशा हंसी मजाक करता। तो खुद के पाठ से संतुष्ट नहीं अगर हम रहेंगे, वो तो मजाक में बोलता था, परंतु हमारे को जो मिला हुआ इतना ऊंचे से ऊंचा पाठ है ड्रामा में, अगर उसकी हमारे को स्मृति नहीं रहती है, भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य उदय किया और मेरे हाथ में सर्व का भाग्य उदय करने की कलम दिया, बाबा ने मुझे इतना ऊंचा बनाया, परंतु हम उस ऊंची स्टेज पर स्थित नहीं रहते हैं जिसके कारण संतुष्टता क्या होती है, गायब होती। उसके बाद बाबा को उलाने देते रह गए, बाबा आप तो कहते हो, बाबा ने कहा ना बाबा से भी असंतुष्ट होते हैं, उसके ज्ञान से भी असंतुष्ट होते हैं। बाबा आपने कहा ना हम आपको मदद करूंगा, आपकी तो हमको मदद मिलती नहीं, अरे बाबा सदैव मदद करने के लिए तैयार है, और आप सिर्फ दिल से बाबा कहो, पर जब हम दिल से बाबा कहते ही नहीं है, स्नेह से बाबा कहते ही नहीं, तो बाबा मदद कैसा क्या करेगा, बाबा मदद किसको करेगा, मदद लेने वाला भी पात्र व्यक्ति चाहिए। अगर हम पात्र हैं, अगर हम बाबा के लव में लीन हैं, बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, अगर हमारा संसार ही बाबा है तो बाबा सदैव हमारी मदद करने के लिए तैयार, परंतु हम मदद लेने ने, कहते हैं ना देंदा दे लेंदा तक पाए, देने वाला देता रहता है परंतु लेने वाले क्या करते, लेते नहीं है, लेते लेते थक जाते, तो फिर क्या करते, भगवान को ही उलाना देना चालू कर देते हैं, ये क्या है बाबा मेरा ऐसा कैसा पार्ट है ड्रामा में, मेरा पार्ट तो अच्छा नहीं बनाया, अरे उसने नहीं बनाया, मैंने मेरा पार्ट बनाया। तो बाप से भी कभी कभी कोई कोई आत्माएं क्या होती है, असंतुष्ट होती है, बाप से असंतुष्ट, फिर आपस में संबंध संपर्क में असंतुष्ट, बाबा की पहचान न होने के कारण उससे असंतुष्ट हो, और संबंध संपर्क में आते हैं ड्रामा के विस्मृति के कारण असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये बहुत गहरा राज बता दिया है कि ये वैरायटी ड्रामा है, एक का पार्ट न मिले दूसरे पार्ट से, एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से, ये ड्रामा माना ही परिवर्तनशील, ये सब समय भी परिवर्तित होता है, व्यक्तियां जो है वो भी सब भिन्न भिन्न है, उनको देख करके हमें असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। सदैव अपने को अगर आईने में देखते रहेंगे, जैसा बाबा कहते हैं कि बच्चे मुखड़ा देख ले प्राणी, अगर मैं प्राणी सदैव मुखड़ा देखता रहता हूँ ज्ञान के आईने में, तो क्या होता है, हम किसी से कभी असंतुष्ट नहीं होते। परंतु आईने में मुखड़ा देखने के बजाय क्या करते हैं, विंडो में देखते रहते हैं, बाहर के लोगों को देखते रहते, दूसरों को देखते रहते हैं। दूसरों को देखने के कारण क्या होता है, असंतुष्ट होते हैं। परंतु बाबा ने जो हम बच्चों को समझ दिया है कि सदैव स्व का दर्शन करते रहो, स्व का चिंतन करते रहो, स्व का परिवर्तन करते रहो, जिसको ये याद है वो कभी असंतुष्ट नहीं हो सकती आत्मा। वो औरों के संबंध संपर्क में आएगी तो भी असंतुष्ट नहीं होगी। हम ऐसा कैसा चाहते हैं सबने अच्छा पाठ बजाना चाहिए, ये तो सब चाहिए इसमें, तो ये राजा ही स्थापन होती है, इसमें दास दासी भी बनने वाले हैं, राजा रानी भी बनने वाले हैं, राजा ही घराना भी बनने वाले हैं, सब बनने वाले हैं। इसीलिए जो भी पाठ बजाते हैं वो बहुत एक्यूरेट पाठ बजाते, तो वो एक्यूरेट पाठ बजाते ये अगर हमारी बुद्धि में है तो हम किसी के पाठ को देख करके कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकते। एक बहन ने अपना अनुभव बताया, कहा शुरू शुरू में जब यज्ञ में थे तो हम जब आपस में ड्यूटी में थे तो एक बहन हमको हमेशा बहुत हैरान करती, तो हमने साकार बाबा को कहा कि बाबा ये ना मेरे को बहुत डिस्टर्ब करती है, ये मेरे को कोई दूसरा साथी दे दो। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं उसको समझा दूंगा, तो ठीक हो गया, बाबा ने उसको समझाया। तो भी वो उसके संस्कार जो थे वो संस्कार तो अपने जरूर बताएगी, वो वैसा ही डिस्टर्ब करती रहती थी सदैव, वैसा ही तंग करती रहती थी। फिर जब ये ऐसा ही तंग करती थी फिर ये बाबा के पास दूसरी बारी गई, कहा कि बाबा वो ना आपने उसको समझाया, बाबा ने कहा हाँ मैंने समझाया, बोला उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, आप फिर उसको समझाओ। फिर उसको समझाया, बाबा ने समझाया, फिर वो वैसा ही करती थी जैसा उससे बर्ताव करती थी। फिर ये बड़ी तंग हो गई, फिर गई बाबा के पास, बाबा आपने उसको समझाया, तो बाबा ने कहा देखो बच्ची तुमको सतयुग में दासी चाहिए या नहीं चाहिए। तो जिस समय बाबा ने उससे ये प्रेम से प्रश्न पूछा तुमको सतयुग में दासी चाहिए या नहीं चाहिए, बाबा ने ये प्रश्न पूछा, बोला मेरे को मैं इतनी सेटिस्फाई हो गई, संतुष्ट हो गई, मैं जाके उस बहन को गले लगाया बाबा से मिलने के बाद, कि अरे मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, ये अपना पार्ट प्ले कर रही है, मेरे को अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो मैं अपना पार्ट, क्योंकि संगम युग ये ड्रामा की शूटिंग का समय, इस समय पर हमारा ड्रामा में जो पार्ट शूट होता है वो कलप कलप रिपीट होता है। तो आप देखेंगे जिस समय एक्टर शूटिंग का समय होता है तो कितने अलर्ट रहते हैं, कितना उनका अपने ऊपर अटेंशन होता है, वो ये नहीं देखते हैं कि दूसरा क्या पार्ट बजा रहा है, वो अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा शूट करना चाहते। अगर कोई अच्छा पार्ट नहीं बजाता है तो उसके लिए डायरेक्टर है, उसके लिए वो जवाबदार है, एक्टर एक दो के ये नहीं होते हैं, जवाबदार नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो उसी तरह से मैं तो एक्टर हूं ना, मेरे को मेरा पार्ट इस ड्रामा के अंदर एक्यूरेट शूट करना है। अगर ये बात मेरी बुद्धि में है तो मैं किसको भी नहीं देखेगी, देखेगी तो किसको देखेगी, सी फादर फॉलो फादर, पहले नंबर वाले को देखे ना, दूसरों को देखे क्यों। परंतु दूसरे के पार्ट को देख करके हम डिस्टर्ब हुए, ये तो क्या है, हमारा ही नुकसान, हमारी संतुष्टता गायब हो जावे। इसीलिए बाबा ने कहा जो भी पार्ट बजाते हैं हरेक इस ड्रामा के बंधन में बांधे हुए है, ड्रामा को किसी को करेक्शन देने की आवश्यकता नहीं। अगर ड्रामा को करेक्शन देना आप चालू कर देंगे ना, आपका कनेक्शन बाबा से टूट जाएगा। उसकी सजा ये है, जब मेरा कनेक्शन बाबा से टूट गया, सप्लाई बंद हो गया मेरा सुख शांति शक्ति का, क्योंकि हमारी जो भी प्राप्तियां हैं, प्राप्तियों का आधार बुद्धि का योग है। अगर मेरा लिंक टूट गया, बुद्धि टूट गई, तो क्या हो गया, मेरे को प्राप्तियां भी बंद हो जाएगी। इसीलिए मुझे क्या करना है, औरों को करेक्शन देने के बजाय मुझे खुद को ही करेक्ट करके चलना। जब ये बात मेरी बुद्धि में होती है तो हम क्या करते हैं, अपने पार्ट को ठीक रीति से एक्यूरेट बजाते हैं, उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। संतुष्ट वो ही रह सकता है जो बाबा की आज्ञाओं पर हमेशा चलता। आपको सेटिस्फेक्शन होगा, अरे बाबा ने जो बोला वो मैंने किया, बाबा ने जो कहा वो मैंने करके बताया। अगर हम बाबा के कहने के अनुसार नहीं चले, बाबा के आज्ञाकारी बन के नहीं चले, तो वो असंतुष्टता जो है वो हमारे अंदर घर कर जाती। असंतुष्ट रहने वाले प्रकृति से भी असंतुष्ट होते हैं। सीजन बदली होगा ना, अभी ये गर्मी का सीजन आया, ये क्या है, फालतू है, गर्मी फालतू है, गर्मी नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत गर्मी होती है, इससे तो ठंडी के दिन अच्छी। अरे वो सीजन है, उसको गर्मी को आना है, गर्मी नहीं आएगी तो बरसात कैसा आएगा, बरसात आएगा ना उसके साथ भी लड़ेंगे, ये क्या है बरसात, सारे कपड़े भीगते, कीचड़ है, क्या है, इससे तो गर्मी अच्छी थी है? मतलब व्यक्तियों के साथ तो मेरा झगड़ा है, फिर प्रकृति के साथ भी मेरा झगड़ा है। व्यक्तियों से तो मैं असंतुष्ट होती हूँ, प्रकृति से भी असंतुष्ट होती रहती हूँ, चेतन से भी असंतुष्ट, जड़ से भी असंतुष्ट। अच्छा, इस प्रकृति के साथ झगड़ा, इस प्रकृति के साथ भी झगड़ा, ये क्या है, फालतू बीमारियां होती है क्या क्या, बाबा आप मदद नहीं करते, हमारे को इतनी तकलीफ होती है, हमारे को चलने में तकलीफ होती है, आप देखते नहीं है क्या? अरे ये मालूम है, ये पांच तत्व तमो प्रधान है, उसका बना हुआ शरीर है तो उसमें तकलीफ तो होने ही वाली है ना। तमो प्रधानता माना क्या, तकलीफ लेना ना, और हमारा हिसाब किताब है ना। तो अगर ये बातें हम ध्यान में रखते हैं कि ये मेरा ही हिसाब किताब है, मैंने जो किया है वो मेरे को भोगना पड़ेगा, जब भी किया तभी तो हमने बहुत हंस हंस के किया, अभी जब भी भोगना पड़ता है तभी रोने की क्या जरूरत है, ये तो बताओ, तभी भी हंसो ना, अच्छा हो गया हमारा ये चुकतू हो गया, धर्मराजपुरी से तो छूटते है, समझो कोई बीमारी आती है तो अच्छा है ना, हमारा हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, धर्मराजपुरी से हम छूट जाएंगे। यहाँ तो देखो कोई बीमारी होती है तो क्या होता है, दवाई मिलेगी, पूछने को आएंगे भाई क्या है, कैसे आप, ठीक है, नहीं है, क्या है, पूछेंगे ना। और धर्मराजपुरी में कौन पूछने को आएगा, हमको दो चार डंडे मिलेंगे, अरे कौन, तुमने डंडे खाए, तुम्हारी हालत क्या है, कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए यहाँ ही हमको बाबा ने ये पक्का कराया हुआ है, देखो ये कि तुम जिस शरीर में हो उस शरीर में रह करके, जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में रह करके, जो मित्र संबंधी है, जो तुम्हारे आसपास वाले हैं, उन सभी के साथ रह करके तुम्हें कंप्लीट बनना है। ना ये शरीर बदली होने वाला है, ना वातावरण बदली होने वाले हैं, ना ये सब देहधारी बदली होने वाले, जो है वो है। इन सब के साथ रहते हुए मुझे अपनी कंप्लीट स्टेज को प्राप्त करना है, ये मुझे सदैव बुद्धि में रखना है। जब ये मेरी बुद्धि में होता है तो हम सदैव पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देते हैं और बातों की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। परंतु ये बात जब हम भूल जाते हैं, ये ठीक हो जावे ना तो मैं ठीक हो जाएगा, वो ठीक होने वाला नहीं है, मेरे को ही ठीक होना है। कहा जाता है जो ओटे सो अर्जन, विश्व की राजाई मेरे को चाहिए और बाकी ठीक दूसरे को होना है, ये तो रंग बात है ना। अगर मेरे को प्राप्ति चाहिए तो मेरे को ही झुकना पड़ेगा, मेरे को ही मरना पड़ेगा, मेरे को ही औरों को भी क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो सामने वाले के ऊपर नहीं रखो, परिस्थितियों को देख के भी घड़ी घड़ी स्थिति बिगड़ती रहेगी, असंतुष्टता आती रहेगी, ये क्या है, सारी परीक्षाएं मेरे को ही आती है, अरे मेरे को क्यों नहीं आएगी, मेरे को डिग्री बड़ी चाहिए, ऊंची चाहिए, फिर इसमें नाराज क्यों होते हो, परीक्षाएं होती है। अगर तुम्हारे को ऊंचा पद नहीं चाहिए तो ज्यादा परीक्षा नहीं आएगी, हमेशा ये याद रखो, जिसके ऊपर ज्यादा परीक्षाएं आती है वो ज्यादा ऊंचा पद पाने वाले। वैसा भी स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, जो ज्यादा परीक्षाएं देता है वो ही तो ज्यादा बड़ी डिग्री लेता है ना, तो इसलिए उसको देख करके तुम घबराते क्यों, साइड सीन को देख करके घबराते क्यों, परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियां साइड सीन है, साइड सीन को देख करके डिस्टर्ब होने की क्या बात है? साइड सीन किसके लिए देखा जाता है? साइड सीन देखा जाता है मनोरंजन के लिए। आज देखो कोई भी कहाँ ट्रेवल करता है, कहाँ बाहर जाता है, जाकर के पहले जब टिकट लेने को जाएगा तो क्या करते हैं? पहले जाकर के कहेंगे हमारे को विंडो सीट देना, बस में जाना होवे, ट्रेन में जाना होवे, प्लेन में जाना होवे, सब विंडो सीट मांगते। क्यों? क्योंकि साइड सीन देखने को मिलती है। यहाँ खर्चा करके साइड सीन देखने को जाते हो और ये जो परिस्थितियां साइड सीन है ये मुफ्त में देखने को मिलती है, इनको देख के नाराज क्यों होते? वो साइड सीन देख के खुश हो रहे हो और ये साइड सीन देख करके नाराज हो रहे, असंतुष्ट हो रहे। तो हर परिस्थिति को अगर हम साइड सीन समझ के चलते हैं तो हमारा मनोरंजन होता। हम साकार बाबा को देखते हैं ना, उसके ऊपर कितनी परीक्षाएं आई, कितनी परिस्थितियां आई, परंतु बाबा कितना मस्त रहा, कितना संतुष्ट रहा, कितना सबको संतुष्ट किया, कितना प्रसन्न रहा। आपने बाबा मामा का कभी चेहरा ऐसा देखा कुंभलाया हुआ? यह सोच में इतना बड़ा बेगरी पाठ चला, परंतु उस बेगरी पाठ में भी बाबा सदैव प्रसन्न। बाबा की कभी कभी मूर्ति ऐसी होती थी, ऐसा चेहरा दिखाई पड़ता था जैसा विचार सागर मंथन करता हुआ, जैसा शेष शैया पर विष्णु लेटा हुआ है, आनंद में है। तो बाबा की सदैव आनंदमय मूर्ति रही। उस इसका कारण ऐसा नहीं शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया इसीलिए बाबा ऐसी मूर्ति बना, ये बात नहीं है। बाबा ने खुद के ऊपर रात दिन बहुत मेहनत की। पहले दिन से बाबा ने अपने ऊपर मेहनत किया, बाबा ने वो नशा चढ़ाया अपने को कि मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, मैं फर्स्ट नंबर की आत्मा हूँ। फर्स्ट नंबर की आत्मा है तो वो नंबर लेने के लिए उसने मेहनत किया। देखो इस ड्रामा के अंदर मम्मा और बाबा इन दोनों के पद मुकरर है, डिक्लेयर है, सबको मालूम है, बच्चे से लेके बूढ़े तक ब्राह्मणों को, कि ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। परंतु मम्मा और बाबा ने उस पद को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत किया, आपको और हमको मालूम पड़ जावे हमारा कौन सा नंबर है। हम तो चादर ओढ़ के सो जाएंगे, अरे अपना नंबर तो मुकरर है, मेहनत करने की दरकार नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस समय पर मम्मा को ये मालूम पड़ा कि मैं लक्ष्मी बनने वाली हूँ, उस दिन से लेकर के मम्मा ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्षणों को चेंज किया, अपने अंदर वो लक्ष्मी के लक्षण भरना चालू किया। बाबा ने वो लक्षण अपने अंदर भरना चालू किया, अपने को मेहनत करके ऐसा बनाया। तो हमें भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें भी अपने पार्ट को जानते हुए, इस ड्रामा के राज को जानते हुए, वैरायटी ड्रामा के राज को जानते हुए खुद संतुष्ट रहो, औरों को देख करके भी खुश होते रहो। हर एक जो भी पार्ट बजाता है साक्षी होकर के देखो, कोई भी परिस्थिति आती है उसको हंस के मुंह दे तो क्या होगा, वो परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगेगी, वो मनोरंजन का साधन लगेगा। नहीं तो थोड़ी भी परिस्थिति होती है ना तो घबरा जाते हैं। मनोरंजन के बदले मन को रंज होता है, रंज होना मना दुख होता है, दुख की फीलिंग आती है, अरे ये क्या है, ऐसी ऐसी क्या परिस्थिति है? अरे आएगी, वो तो जरूर आएगी। बाबा ने कहा है माया अंत तक तुम्हारे ऊपर वार करती रहेगी। माया ऐसा ही छोड़ देगी क्या? आज एक छोटा सा मटका लेने को जैसे ठोक ठोक के लेते हैं, और यहाँ बाबा हम आत्माओं से सौदा करता है, हमको विश्व की बादशाही देता है, ऐसा ही दे देगा? ऐसा नहीं देता। उसका नाम भोलानाथ है, पर है बड़ा पक्का, भोला नहीं है वो। एक एक को चेक कर करके लेता है, एक एक को पक्का कराता है, क्योंकि हमें विश्व का मालिक बनना है, विश्व के ऊपर राज करना है। तो यहाँ कर्म इंद्रियों के ऊपर भी राज करके अपनी कर्म इंद्रियों को इतना शीतल बनाना है, सदैव अपनी उस स्थिति में रह के आनंदमय स्थिति में रहना है। तो जितना जितना हमारे अंदर बाबा जो गुण है, बाबा के अंदर, बाबा कहते साकार बाबा कहता था, बच्चे जब भी तुमको तुम मधुबन में आते हो ना, उस समय सिर्फ हिस्ट्री हाल था, तो बाबा कहता था जब यहाँ आते हो तुमको काम धंधा तो कुछ होता नहीं, इसीलिए ये जो हिस्ट्री हाल है, हिस्ट्री हाल में आप अभी भी देखते हो वहाँ ट्रांसलेट का चित्र है, राधा राधा कृष्ण ऊपर त्रिमूर्ति है, राधा कृष्ण नीचे लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहता था जब भी तुमको फुर्सत मिले ना इस चित्र के आगे आके बैठ जाओ और बैठ करके अपनी भेंट करो उसकी लक्ष्मी नारायण की और अपनी भेंट करो उसमें और हमारे में कितना अंतर है। तो क्या होगा तुम्हारे को मालूम पड़ेगा हमारे में कितना अंतर। लक्ष्मी नारायण तो बहुत दूर की बात है, इतनी भेंट करने की भी दरकार नहीं है। अगर हम सदैव बाबा के साथ अपने संस्कारों का अपने विचारों की भेंट करते रहेंगे तो हमारी कमजोरियों की भेंट आप ही चढ़ जाएंगे। परंतु अगर हम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए क्या होता है पूरा पुरुषार्थ नहीं करने के कारण असंतुष्टता आती है। अगर हम पुरुषार्थ के ऊपर फुल अटेंशन दे करके चलते हैं तो कभी भी असंतुष्ट नहीं होते हैं। इतना तो हमारे को पुरुषार्थ करना है जो इस घड़ी भी मेरा शरीर छूटे तो मेरे को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि बाबा ने जो कहा वो मैंने करके बताया। पश्चाताप नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं करना पड़े मेरे को कि बाबा ने इतना समझाया पर मैंने नहीं किया। ये तभी हो सकता है जब हम अपने ऊपर फुल अटेंशन दे करके चलते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता बच्चे खबरदार रहो, सावधान रहो, औरों को सावधान करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चलते रहो। तो संतुष्टता ये हम ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बाबा कहता है भले तुम्हारी ये प्राण जाए परंतु हमारी खुशी कभी नहीं जानी चाहिए, हमारी संतुष्टता नहीं जानी चाहिए, ईश्वरीय आनंद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ही जन्म है जिस जन्म में हम डायरेक्ट ईश्वर की परवरिश लेते हैं। तो जब ईश्वरीय परवरिश इतनी ऊंची परवरिश हम बच्चों को मिलती है तो हमारी स्थिति भी ऐसी ऊंची रहनी चाहिए। इस बात का अगर ध्यान रख करके चलते हैं तो कुछ भी होता है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। साक्षी होकर के देखो, न्यारे होकर के देखो, सदैव खुश रहो, औरों को खुशी बांटते रहो। ओम शांति।
दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बताएगा, निभा